हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 में हूँ आपकी अपनी होस्ट दोस्त आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं एडवोकेट पृथ्वीराज सिक्का जी. ही इज प्रैक्टिसिंग इन हाई एंड सुप्रीम कोर्ट एंड ही इज द मैनेजिंग पार्टनर फॉर लॉ ज्यूरिस. तहे दिल से स्वागत करती हूँ इनका रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में.
थैंक यू
सर. सबसे पहला सवाल, आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल नेग्लिजेंस पर. तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है, किन चीजों को हम नेग्लिजेंस मानेंगे?
ऐसा है, मेडिकल के लिए जो है सेट नॉर्म्स हैं और डॉक्टर्स जो है क्वालिफाइड डॉक्टर्स उस सेट नॉर्म्स के ड्यू केयर लेता नहीं, प्रिकॉशन लेनी चाहिए और जो उसके मेडिकेशन है जो प्रोसीजर है उसको प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं किया तो तब मेडिकल नेग्लिजेंस होती है. और अगर उसको प्रॉपरली अडॉप्ट किया है और प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया तो देन और पेशेंट को बचाने के लिए पूरी प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया तो तब नेग्लिजेंस नहीं है.
जी हाँ, तो एडवोकेट सिक्का का कहना है कि अगर आपने जो चीजें जो नॉर्म्स हैं मेडिकल की अगर उन्हें फॉलो किया है तो ऑफ कोर्स वो नेग्लिजेंस नहीं कहलाएगा. उसे हम शायद ह्यूमन एरर की कैटेगरी में रखेंगे. yes. कि मान लीजिए अगर एक डॉक्टर से कोई गलती हो जाती है लेकिन उस गलती की उन्होंने सुधार किया है, उस भूल को उन्होंने ठीक करने की कोशिश की है तो वो एक ह्यूमन एरर कहलाएगा कि हम इंसान हैं और हमसे गलती हो सकती है. लेकिन अगर मान लीजिए एक डॉक्टर से कोई गलती होती है और उस गलती को ठीक करने की बजाय वो उसे भगवान के भरोसे छोड़ दें या आपके ऊपर कोई भी इलाज करने की कोशिश ना करे तो वहां पर मेडिकल नेग्लिजेंस कहलाता है. मेडिकल नेग्लिजेंस आज के टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और वो इसलिए है क्योंकि आज के टाइम में हम अपना ख्याल कम रख रहे हैं और ज्यादा डिपेंडेंट है मेडिसिन पर. और जब आपका ख्याल डॉक्टर्स रख रहे हैं और उनसे कोई गलती हो जाए तो ऑफ कोर्स आपको ये हर्जाना भुगतना पड़ता है. लेकिन ये हर्जाना आप क्यों भुगतें जब आपने अपनी जिंदगी को किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के हाथों में दे दिया है. और जब आप अपनी जिंदगी को किसी के हाथों में सौंपते हैं तो उस पर 100% भरोसा करके सौंपते हैं. क्या हो सकते हैं वो मेडिकल नेग्लिजेंसेस? मैं चाहूंगी सर कि आप हमारे सभी लिसनर्स को कुछ एग्जांपल्स के जरिए बताएं.
ऐसा होता है कि कई बार डॉक्टर अगर बिना प्रॉपरली चेक किए, प्रॉपरली एनालिसिस किए, उसके टेस्ट के बगैर उसको कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देता है जो रिएक्शन कर जाती है या जो उसके लिए बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, तो एक ये मेडिकल नेग्लिजेंस हो सकती है. दूसरा ये है कि कई बारी क्या होता है कि डॉक्टर जो है टेलीफोन पर ही मेडिसिन बताने लगते हैं तो वो मेडिसिन वो भी नेग्लिजेंस में आता है. अच्छा, कई बारी ऑपरेशन में जो है सीजर या कोई इंस्ट्रूमेंट किसी पेट में रह गया या अंदर रह गया तो वो भी नेग्लिजेंस है और अंदर कई बारी कॉटन रह जाती है. दिस ऑल आर नेग्लिजेंस की ही हैज नॉट टेकन ड्यू केयर. ही मे बी क्वालिफाइड डॉक्टर बट ही शुड टेक ऑल प्रिकॉशंस एंड केयर कि उसके अंदर कोई इस तरीके से मिस हैपनिंग ना हो जाए जिससे कि उसके पेशेंट मर जाए या उसके लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए.
जी हाँ, जब कभी एक डॉक्टर किसी का इलाज करते हैं तो वो इस भावना से इलाज करते हैं कि भाई ये बिल्कुल स्वस्थ होकर जाए. लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान बिल्कुल एक जैसा सोचे. हो सकता है कि एक डॉक्टर से भी गलती हो जाए. गलती अगर अपराध है तो उसकी सजा जरूरी है. लेकिन गलती अगर गलती है तो उसे माफ किया जा सकता है लेकिन तब तक जब तक उसका कहीं ना कहीं कोई सुधार हो. आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8. मैं हूं आपकी अपनी होस्ट दोस्त आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं एडवोकेट पृथ्वीराज सिक्का जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं हाई एंड सुप्रीम कोर्ट और साथ के साथ ही इज द मैनेजिंग पार्टनर फॉर लॉ ज्यूरिस. एक बार फिर से इनका स्वागत करती हूं और हम बात कर रहे हैं मेडिकल नेग्लिजेंस पर. और जब मेडिकल नेग्लिजेंस की बात आई है तो हमने ये जान लिया है कि नेग्लिजेंस किसे माना जाता है. अब सवाल उठता है कि मान लीजिए आपके साथ कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का हादसा हुआ है तो अब आप क्या करेंगे? हाउ डू यू फाइल अ केस? यानी आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर पर केस फाइल करेंगे या उस हॉस्पिटल पर, नर्सिंग होम पर फाइल करेंगे? और इस पूरा प्रोसीजर क्या होता है? क्या आप पुलिस के पास जाएंगे या आप अपनी जो परेशानी है ये किसके पास जाकर बताएंगे?
ऐसा है कि पुलिस के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि अगर कोई नेग्लिजेंस है तो नेग्लिजेंस के लिए आपको सेकंड ओपिनियन लेनी जरूरी है.
जी.
और सेकंड ओपिनियन जो है गवर्नमेंट के जो प्रीमियर हॉस्पिटल है जैसे एम्स है, सफदरजंग है, वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है उसने कोई अगर ओपिनियन देता है कि इसमें नेग्लिजेंस है तो तब आप नेग्लिजेंस में कवर करेंगे. अगर उसने ओपिनियन ये दिया है कि इसमें कोई नेग्लिजेंस नहीं है, ये ओनली ह्यूमन एरर है, तो नेग्लिजेंस में फॉल नहीं करेगा. सेकंडली, उस बेसिस पर आप अगर पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जैकब मैथ्यूज केस में कहा है कि आप कभी भी पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती, पहले पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और पुलिस को इसके साथ सिमिलर उस पेशेंट को प्रेजेंट करके या उन रिपोर्टों को दिखाकर जो है गवर्नमेंट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर या हेड से जो है रिपोर्ट लेगी, और रिपोर्ट लेने के बाद पुलिस को एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेने के बाद इसे कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। कोर्ट परमिशन देगी तब कोर्ट समन कर सकती है डॉक्टर को, और आईओ को कोई राइट नहीं है अरेस्ट करने का। तो जहां तक ये पुलिस के पास कंप्लेंट है, वो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से नलीफाई कर दिया कि डॉक्टर कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी पेशेंट का नुकसान हो, इसलिए डॉक्टर के खिलाफ जो इस तरीके के केसेस फाइल होते हैं वो हरासमेंट है।
जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो ये कहते हैं कि ये हरासमेंट है, लेकिन कई बार एक विक्टिम जो होता है यानी एक पेशेंट होता है वो भी हरास हो जाता है। एडवोकेट पृथ्वीराज सिक्का जी से मैं ये जानना चाहूंगी कि सर मुझे ये बताइए, मान लीजिए गलत डायग्नोज हुआ है तो क्या उसे मेडिकल नेग्लिजेंस कहा जाएगा?
नहीं, डायग्नोज अगर जो आपके टेस्ट की रिपोर्ट है वो गलत हो जाए तो उससे नेग्लिजेंस नहीं कहते। रिपोर्ट में ओपिनियन डिफर हो जाती है, तो अगर एक ओपिनियन ठीक नहीं आई है उस बेसिस पर आपका ट्रीटमेंट तो हुआ नहीं, तो इसलिए वो रिपोर्ट दो जगह से लेने के बाद और उनमें कोई माइनर डिफरेंस है तो वो नेग्लिजेंस में नहीं आता। जहां तक है ज्यादा ये है कि कंज्यूमर फोरम उसको ये कह सकता है कि आपकी रिपोर्ट गलत थी, आप रिफंड करिए इनके टेस्टों की रिपोर्ट चार्ज। सेकंड ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मार्टिन डसूजा के केस में एक गाइडलाइंस फिक्स किए हैं कि एक तो ये कि जो डॉक्टर जो है क्वालिफाइड ट्रीटमेंट करेगा उसे करंट प्रैक्टिस क्या है, और ये करंट प्रैक्टिस ज़्यादातर जो है हैरिसन्स प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिसन्स की बुक में सारा दिया हुआ है, वो वर्ल्ड का ऑथेंटिकेटेड सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं
जी,
तो उस प्रिंसिपल को यूज़ किए हैं कि नहीं। फिर दूसरा ये कि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर उस लायक है नहीं। कई जगह क्या होता है कि हॉस्पिटल में एक ऑर्डिनरी कमरे में रख देते हैं और वहाँ पर जो है हर आदमी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, और कहते हैं आईसीयू है तो वो आईसीयू ये एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो ये भी नेग्लिजेंस में आएगा। दूसरा ये कि पैरा मेडिकल और जितने भी नर्सिंग स्टाफ है वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, उनका प्रॉपरली कोर्स किया होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हुई होनी चाहिए। ये नहीं कि एक वहाँ पर पीछे हमने सुना था कि वार्ड बॉय जो है वो इंजेक्शन लगा रहा है, तो इस तरीके की जो अगर काम होते हैं एक वार्ड बॉय से एक ऑर्डनरी पर जो उनके यहाँ एम्प्लॉयज है उससे इंजेक्शन लगवा दें और बैंडेज करा दें तो ये हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस में आएगा। तीसरा ये कि उन्होंने कहा है कि जो हाइजीनिक सिस्टम होना चाहिए वहाँ पर कोई मतलब मच्छर मक्खी और ये इनको सबको हटाने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए और जो स्ट्रिक्टली उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। किसी भी डॉक्टर को कोई भी प्रेस्क्राइब मेडिसिन नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो उसका एक्चुअल उसके टेस्ट रिपोर्ट ना देखे या उसको एक्चुअल फिजिकल एग्जामिनेशन ना करे। बिना फिजिकल एग्जामिनेशन के कई बार डॉक्टर टेलीफोनों पर मेडिसिन लिख देते हैं जो रिएक्शन कर जाती हैं, तो ये भी एक नेग्लिजेंस की डेफिनेशन में आता है। दूसरा ये कि डॉक्टर को कभी भी पेशेंट के कहने के हिसाब से मेडिसिन और ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को एक्चुअल उसकी हालत देख के उसकी प्रॉब्लम देख के उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए और उसको अपना एनालिसिस करना चाहिए और टेस्ट रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन ये सब उसको अच्छी तरह चेक करना चाहिए। और उसके बाद डॉक्टर जो है कभी भी उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अगर उसे एक्सपेरिमेंट नई मेडिसिन चेक करनी है या कुछ है जिस तरीके से उसको सॉल्ट्स वगैरह उसके जो है इंग्रेडिएंट्स मेडिसिन कंपनी ने उसे बताए हुए हैं, लेकिन उसके लिए भी अगर उसे कुछ लेना है तो पेशेंट से कंसर्ट लेनी चाहिए, और पेशेंट से कंसर्ट जहाँ तक मैं एडवाइस दूंगा कि राइटिंग में लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में पेशेंट कई बार मना कर देता है कि मेरे से कोई पूछा ही नहीं है। और उसके बाद एक्सपर्ट्स जो है अगर खुद को कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर को ये समझता है कि इसमें कुछ डाउट है तो उसे किसी और एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। चौथी चीज़ ये कि कोई भी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अपना फुल रिकॉर्ड रखना चाहिए डायग्नोस का, ट्रीटमेंट का, और उसका अदर उसको क्या मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, किस किस तरीके से उसकी कंडीशन है, वो सारी पूरी मेंटेन करनी चाहिए, ये गाइडलाइंस दी है।
जी हाँ, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और अगर इसके बावजूद कोई गलती होती है तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस कहलाती है। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो झटपट हमें बता दीजिए 8010781078 पर। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो इनके पास आए होंगे, मेडिकल नेग्लिजेंस आजकल बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट्स को जानने की ज़रूरत है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जो डॉक्टर्स को भी जानने की जरूरत है और उन्हें ध्यान में रखने की जरूरत है। एक और सवाल जो मेरे जहन में उठ रहा है वो ये है कि कितने टाइम बाद तक कोई इंसान किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर पर केस कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। मान लीजिए आज मेरे साथ कुछ नेग्लिजेंस हुआ लेकिन उसके रिपरकशंस मुझे 6 महीने बाद पता लगे हैं, तो क्या कोई एक फिक्स्ड टाइम पीरियड है जब तक कोई इंसान कानून का दरवाजा खटखटा सकता है?
नेग्लिजेंस के लिए आप कंज्यूमर में जो कंप्लेंट है वो 2 साल के अंदर फाइल कर सकते हैं
जी।
और लेकिन उसके लिए ये है कि आपको सफिशिएंट प्रूफ चाहिए कि आपने जो ट्रीटमेंट कराया, जो आपके पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और मेडिकल इन्वेस्टिगेशन और डॉक्टर के ट्रीटमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बेसिस पर जो एक्सपर्ट अदर डॉक्टर हैं या स्पेशलिस्ट हैं उनकी क्या ओपिनियन है। उन्होंने अगर ये लिखा है कि ये जो है इन्होंने गलत कर दिया था, इसकी वजह से ये हुआ है, इसका इम्पैक्ट इस पर हुआ है, साइड इफेक्ट हुए हैं, तो तब आप एक्शन ले सकते हैं। अगर उन्होंने ये लिखा है कि ट्रीटमेंट प्रॉपर हुआ है लेकिन पेशेंट जो है वो खुद उसको रिस्पांस नहीं दे पाया या पेशेंट की बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाया, तो उस केस में नेग्लिजेंस नहीं बनेगा
जी। एक और प्रश्न उठता है कि मान लीजिए किसी डॉक्टर ने डायग्नोस ही गलत किया है, यानी उन्होंने जो जांच पड़ताल की है और उस गलत डायग्नोस के बेस पे उन्होंने ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया, उस ट्रीटमेंट से उत्पन्न होने वाले रिपरकशंस यानी कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, क्या वो भी मेडिकल नेग्लिजेंस कहलाएंगे?
वो मेडिकल नेग्लिजेंस कराएंगे क्योंकि डॉक्टर को जो डायग्नोस करना है फिजिकली चेक करने के बाद उसे सारे टेस्ट रिपोर्टें लेनी चाहिए। अगर उसने टेस्ट रिपोर्ट नहीं दी ओनली मतलब पेशेंट के कहने पर और उसको मतलब फिजिकली देख के और आइडिया लगा के ओनली दिया है तो देन जो है वो क्या नाम है उस पर मेडिसिन दिए और उससे उसे इम्पैक्ट गलत हुआ है और वो पेशेंट जो है या पैरालिटिक हो गया या उसका कोई बॉडी का पार्ट खराब हो गया या कल को मतलब डेथ हो जाती है तो तब नेग्लिजेंस में आएगा। अगर डॉक्टर को खुद चाहिए कि वो पहले प्रॉपरली उसके डायग्नोस करे, टेस्ट प्रॉपरली ले, अगर डायग्नोस से सेटिस्फाई नहीं है तो किसी और एक्सपर्ट डॉक्टर के पास रेफर कर दे।
जी हाँ, तो ये रेफरेंस भी जरूरी होता है, यानी हम कई बार सोचते हैं कि आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए, अपनी डायग्नोस को देखना भी बहुत जरूरी है कि क्या आपके जो टेस्ट्स हैं वो सही किए गए हैं और क्या उन्हीं के बल पर आपको दवाइयाँ दी जा रही हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस की बात होती है तो मान लीजिए प्रूफ हो गया कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस है और ये डॉक्टर की गलती से हुआ है, अगर डॉक्टर गिल्टी पाया जाता है या उनकी गलती पाई जाती है तो क्या पेनल्टी होती है एक डॉक्टर पर?
वो ये है कि आप कंपनसेशन का फाइल कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं और उसके साथ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सारे लगाने पड़ेंगे कि डॉक्टर इसने ये ट्रीटमेंट किया और उसके साथ में सेकंड ओपिनियन होनी चाहिए और उस बेसिस पर जो कंपनसेशन है वो आपके स्टेटस के हिसाब से, आपके इनकम के हिसाब से और दूसरा जो है डॉक्टर को आपने कितनी फीस दी है, हॉस्पिटल में कितना एक्सपेंसिस किया, उस बेसिस पर ये ऑर्डर हो सकता है। और इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके अपने लाइफस्टाइल पर और उस पर। एक आदमी की इनकम अगर 10 लाख रुपए महीना तो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि उसको कितना इफेक्ट हुआ है
जी।
और डॉक्टर अपने को सेव करने के लिए ये कर सकते हैं, आजकल मेडिकल प्रोफेशनल इंश्योरेंस शुरू हुई पड़ी है, उसमें आप मेडिकल इंश्योरेंस अपने को करा लीजिए। हॉस्पिटल भी अगर कराता है अपने डॉक्टर्स के लिए तो वो जॉइंटली ले सकता है
जी।
तो उस केस में अगर कोई कंपनसेशन देना पड़ेगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी देगी और वो इसको इंश्योरेंस कंपनी जो है हॉस्पिटल और डॉक्टर को इंडेमनीफाई करेगी।
कि अगर डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि उनसे कभी कोई गलती हो सकती है या हॉस्पिटल को लगता है कि उनके डॉक्टर से कोई गलती हो सकती है तो उसमें आपको पूरा कॉस्ट बेयर करने की जरूरत नहीं है, आप इंश्योर हो सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एक पेशेंट के साथ नाइंसाफी हुई है तो उसको कॉम्पनसेशन मिलना जरूरी है। सर, आपने मुझे बताया कि कॉम्पनसेशन इन टर्म्स ऑफ मनी यानी मॉनिटरी कॉम्पनसेशन मिलता है, लेकिन मान लीजिए किसी मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में किसी विक्टिम की यानी किसी पेशेंट की जान चली जाती है तो क्या ऐसे में भी उसे सिर्फ एक मॉनिटरी कॉम्पनसेशन मिलेगा और क्या डॉक्टर को कोई सजा नहीं मिलेगी?
अगर ये प्रूव हो जाता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हो गई है तो आप उसमें तब क्रिमिनल केस उनके ऊपर लॉज हो सकता है, लेकिन उस केस में भी जो है आपको कोर्ट से ही कंप्लेंट फाइल करने के ऊपर ऑर्डर हो सकते हैं क्योंकि पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती किसी
जी। लेकिन मान लीजिए अगर ये केस चलता है तो ऐसे में सजा है
304A में
जी जी। अगर आपके साथ नाइंसाफी होती है तो कानून आपके साथ है और अगर आप नाइंसाफी को गलती से भुगत रहे हैं तो भी आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो जरूरत है आपको ये जानने की कि आप अपनी आंखों को खुला रखें और अपनी अवेयरनेस को हमेशा अपडेटेड रखें। लेकिन अब जहन में जो सवाल उठता है वो ये है कि किन चीजों का ख्याल रखा जाए जब आप अपना इलाज करवाने जाते हैं। एज अ डॉक्टर, क्या फर्ज बनता है एक डॉक्टर का कि वो अपने पेशेंट के साथ कितनी ऑनेस्टी बरते, और साथ के साथ एक पेशेंट का क्या फर्ज बनता है कि वो अपने डॉक्टर को क्या क्या चीजें बताए?
एक डॉक्टर को फिजिकली डायग्नोस करने के बाद उसके जो भी टेस्ट है, जो भी रिपोर्ट्स हैं, उनको प्रॉपर देख के उनके जो मेडिकल नॉर्म्स हैं उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली उसका मेडिकेशन करना चाहिए, जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स बने हैं उसके अकॉर्डिंगली। और कभी भी कोई एक्ट जो है उसके मतलब विदाउट कंसेंट पेशेंट के नहीं करना चाहिए, और पेशेंट को जो है अपनी पूरी प्रॉब्लम जो डॉक्टर को है ओपन करनी चाहिए, बतानी चाहिए, क्योंकि कल को अगर उसे कोई पहले ही प्रॉब्लम है और वो बता नहीं रहा तो ये कंसीलमेंट जो है कल को निकल तो आता है लेकिन उसमें जो है पेशेंट को मतलब फ़ायदा नहीं होता। तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर होगा वो प्रॉपर केयर ले करेगा, वो कभी भी आपके ये नहीं चाहेगा कि मेरा पेशेंट मर जाए या मेरे पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाए। तो नॉर्म्स और जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं उनको प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, और डॉक्टर को अगर न्यू मेडिसन उसके ऊपर ट्राई कर रहा है तो उसके लिए कंसर्ट जरूर लेने चाहिए। न्यू मेडिसन विदाउट कंसर्ट कभी भी जो ऑलरेडी ज़्यादा मार्केट में नहीं है उसको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए।
जी हाँ, कहते हैं ना, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, यानी अगर आप जिंदगी में ऊंचाइयां पाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट का तरीका कभी भी मत अपनाइए। प्रोसीजर्स को फॉलो करिए, बी ऑनेस्ट टू योर पेशेंट्स, एंड पेशेंट्स को यही एडवाइस देंगे कि मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहा जाता है उसे भगवान मानिए, आंख बूंद कर भरोसा करिए, लेकिन अपनी आंखों को भी खुला रखिए, और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो ऑनेस्टली उनके साथ शेयर करिए। और इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने में बिल्कुल देर मत लगा। फिलहाल तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी एडवोकेट पृथ्वीराज सिक्का जी का, जो रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
धन्यवाद।
और दोस्तों, मैं तो ले रही हूँ आपसे इजाजत, लेकिन आपसे वही गुजारिश कि आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइफ।